मुंबई, रावत मेंशन। सुबह 7 बजे जानवी बाथरूम से निकली थी। उसने स्काई ब्लू कलर की जॉर्जेट साड़ी और वाइट कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। वो बेहद प्रीटी लग रही थी। उसने जल्दी से अपने गीले बालों को झटकते हुए हल्का सा मेकअप किया और अपना मंगलसूत्र पहना। उसने एक बार घूमकर अमर को देखा, जो पेट के बल बिस्तर पर सोया हुआ था। फिर वो अपनी चूड़ियां पहनते हुए जल्दी से अमर के पास गई और धीरे से उसके सिल्की बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, अमर, आपको ऑफिस नहीं जाना है। आज सुबह के 7 बज चुके हैं। आपने कहा था सुबह मुझे जल्दी उठना है। अमर ने कसम साते हुए कहा, बच्चा, मुझे और सोना है, मुझे नींद आ रही है। जानवी ने हल्की सी स्माइल की और झुकते हुए अमर के गाल को चूमकर कहा, हाँ, सो जाइए, फिर मुझे डांटना मत कि मैंने आपको नहीं उठाया। अमर ने जैसे ही अपने चेहरे पर गीले होठों को और बालों से निकलते पानी की बूंद महसूस की, उसने झट से आंखें खोलकर जानवी को देखा। सुबह सुबह जानवी को गीले बालों में देखना अमर के लिए किसी जन्नत को देखने से कम नहीं था। वो आंखें खोलते हुए जानवी को देख रहा था, जो अपनी चूड़ियों को देखते हुए मुंह बनाकर अमर को ये सब सुना रही थी। अमर के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने जानवी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, अगर इतने प्यार से उठाओगी तो जरूर उठ जाऊंगा। थोड़े से और एफर्ट करो। अभी तो सिर्फ नींद खुली है, फिर मैं उठकर बैठ भी जाऊंगा, फिर उठकर मैं खड़ा भी हो जाऊंगा और फिर मैं ऑफिस भी चला जाऊंगा। बस बात यह है कि तुम कितने एफर्ट करती हो। जानवी ने कन्फ्यूजन से अमर को देखा। अमर उठकर बैठ गया और फिर जानवी की कमर पकड़ते हुए अपना सर उसके सीने पर रखकर बोला, तुम्हें पता है सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने कभी किसी फीमेल स्टाफ को भी अपने घर में नहीं रखने दिया, क्योंकि मुझे फीमेल वॉइस से चिढ़ हो जाती थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद लगता है मैं कितना गलत था। मुझे तो इस दुनिया में सबसे प्यारी आवाज़ ही तुम्हारी लगती है। जानवी ने प्यार से अमर की चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और झुकते हुए अपने ठंडे होठों को उसके माथे पर रखकर धीरे से चूमते हुए बोली, ये प्यार भरी बातें आप बाद में भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में दीक्षांत आ जाएंगे आपको जगाने के लिए। इससे अच्छा है कि आप पहले से तैयार हो जाओ। अमर ने अपना चेहरा उसके सीने पर रगड़ते हुए मुंह बनाकर कहा, उस हरमजादे का नाम मत लो। खुद एक काम नहीं करता है और मैं जो काम करता हूँ उसमें भी 1000 कमियां निकालता है। जानवी अमर की बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही उनका दरवाज़ा खुल गया और बाहर से दीक्षांत की तेज़ आवाज़ आई, अमर बाबू, बीवी के प्यार में इतना भी मत खो जाओ कि अपने काम को भूल जाओ। मैंने कहा था हम सुबह जल्दी चलेंगे और अभी 7:30 होने वाले हैं और अब तक तुम उठे भी नहीं हो। अमर ने गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा ऊपर करके जानवी के चेहरे को देखते हुए कहा, लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर भी हो गया। खुद तो सिंगल है और मुझे भी अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय नहीं करने देता है। अमर की खुन्नस भरी बातों को सुनकर जानवी को हंसी आ गई। उसने प्यार से अमर के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय जरूर कीजिए, पर साथ में काम को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अमर उठा और सर हिलाते हुए बोला, जी मैडम, मैं आपकी सारी बात समझ गया। फिर वो उठा और जानवी के गाल को धीरे से चूमकर बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं जानवी ने तेज कदमों से चलते हुए दरवाजा खोला। दीक्षांत, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, जानवी को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी जान, क्या वो नालायक उठा? जानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने उन्हें उठा दिया है और वो नहाने गए हैं। अब चलिए, आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, मैं कॉफी बनाती हूँ, दीक्षांत ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आपकी जितनी ख्याल रखने वाली भाभी माँ हो ना, तो फिर ऐसे नालायक दोस्त को झेल सकता हूँ मैं। ये सुनकर जानवी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। वो हंसते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे से दीक्षांत भी स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। ऐसा लग रहा था इस घर के मेंबर्स का सिर्फ एक ही टास्क था, वो था कैसे भी करके जानवी को स्माइल करवाना, और उस टास्क में सब लोग बखूबी पास भी हो रहे थे। जानवी इस घर में आने के बाद बेहद खुश रहने लगी थी। वो मीनाक्षी के उन अत्याचारों को भूल चुकी थी जो उसने बचपन से सहे थे और इस नए घर की खुशियों में अपनी नई जिंदगी ढूंढ रही थी। करीब 15 मिनट बाद हॉल में सब लोग बैठकर कॉफी पी रहे थे। बस वहां त्रिशा और माही नहीं थी। माही तो दीक्षांत के डर से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। वहीं त्रिशा भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी शादी के आगे की रस्मों के लिए। कल्याण सिंह ने जानवी को देखते हुए कहा, बेटा, त्रिशा को भी बुलाकर लाओ, हम इन दोनों को मंदिर भेजेंगे।
जानवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर किचन की तरफ बढ़ गई ताकि त्रिशा के लिए कॉफी ले सके। कॉफी लेकर वो वापस जाने लगी तो उसे रास्ते में ही अमर मिल गया। अमर ने बाकी सबको देखा जो हॉल में आराम से बैठकर कॉफी पी रहे थे। अमर अभी तक भूला नहीं था कि कैसे माही ने जानवी पर कॉफी गिरा दी थी। उसका दर्द अब भी अमर को अपने दिल में महसूस होता था। फिर से त्रिशा के पास जानवी को भेजना अमर को गवारा नहीं था। उसने वो कॉफी का कप लिया और समर्थ के सामने रखते हुए बोला, जो अपनी अर्धांगिनी को उठाकर लाए। मेरी बीवी नौकर नहीं है जो उसे उठाकर लेकर आएगी। समर्थ ने हैरानी से मुंह खोलते हुए अमर को देखा। वहीं कल्याण सिंह ने कन्फ्यूजन में कहा, हाँ माना वो नौकरानी नहीं है पर उसकी छोटी बहन है। अमर ने सोफे पर बैठकर टेबल पर रखी अपनी कॉफी मग को उठाकर एक घूंट लेते हुए कहा, वाह बीवी क्या कॉफी बनाई है। और फिर कल्याण सिंह की तरफ देखते हुए कहा, कल्याण सिंह जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये उसकी बहन है, नौकर नहीं है जो सुबह सुबह उसे कॉफी लेकर जगाने जाएगी, और ना ही उसकी बीवी है जो उसे प्यार से उठाकर लेकर जाएगी। ये सारे काम तो या तो कोई नौकर कर सकता है या फिर उसका पति। तो अपने पोते को समझाओ कि वो उसे उठाकर लेकर आए। रजत ने धीरे से कहा, अमर बिल्कुल सही कह रहा है। समर्थ जाओ त्रिशा को लेकर आओ यहाँ। समर्थ ने मन ही मन रजत और अमर को कोसते हुए कहा, दोनों बाप बेटे मुझे जीते जी कुएं में धकेल रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, भगवान देख रहे हैं। एक दिन इस जुल्म का बदला तो मैं तुम दोनों से जरूर लूंगा। अमर ने समर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए कहा, बाबू गाली बहुत दे ली मन में, अब जाओ। शाबाश, दौड़ते हुए जाओ पर भागते हुए वापस आओ।